سورت النساء آیت نمبر 135، یہاں پر اللہ رب العزت نے عدل و انصاف قائم کرنے کا حکم دیا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا ہے کہ عدل و انصاف کے قیام میں رکاوٹ بننے والے اسباب کیا ہیں۔ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اب آپ سے اللہ تعالیٰ باتیں کر رہے ہیں، آپ کو مخاطب کر رہے ہیں کہ اے ایمان لانے والوں کہاں رہ گئے، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں اپنی عملی زندگی میں ایمان کی سچائی کو اپنے عمل سے جو ہے وہ سچا ثابت کرو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ اس میں مرد اور عورت، بوڑھے جوان، تمام لوگ شامل ہیں۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کونو، ہو جاؤ، قوامین، قائم رہنے والے، قوام، یہاں پہ قوام کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے، اور قوام کا مطلب کیا ہے؟ قائم کرنے والے۔ آپ دیکھیں قائم کرنے والے، کیونکہ قاف و میم سے ہے، اور قوام حفاظت کرنے والے، نگہبانی کرنے والے۔ الرجال قوامون علی النساء، پیچھے بھی آپ پڑھ چکی ہیں نا، محافظ، نگران۔ اب یہاں پہ بھی کیا ہے کہ محافظ بن جاؤ، قائم رہنے والے بن جاؤ، بالقسط، قسط کے، اور قسط کہتے ہیں عدل کو، انصاف کو، عدل قائم کرنے والے بن جاؤ۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ عدل قائم کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، تو جب انسان عدل قائم کرتا ہے تو اس وقت جو ہے وہ دو چیزیں اس کے راستے میں رکاوٹ بن سکتی ہیں، اس کے بڑے سبب دو سبب ہوتے ہیں، ایک ہے کسی کی محبت، قرابت، دوستی، تعلق۔ کیونکہ محبت اور جو یہ دوستی اور تعلق ہے نا، وہ پاؤں کی زنجیر بن سکتا ہے، اس کی وجہ سے شاہد گواہی دینے والا سچی گواہی نہیں دیتا، قاضی اور جج جو ہے وہ محبت کی وجہ سے، قرابت کی وجہ سے جو ہے وہ صحیح فیصلہ نہیں کرتا۔ اور دوسرا بڑا سبب جو ہے وہ دشمنی ہوتی ہے، کسی سے عداوت، دشمنی، نفرت، اور عداوت اور دشمنی کی وجہ سے بھی جو ہے وہ عدل کرنے سے جو ہے وہ لوگ رک جاتے ہیں۔ اور یہاں پر جو ہے وہ فرمایا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، قائم کرنے والے بنو، انصاف کو، انصاف کے علم بردار بنو، شہداء للہ، گواہی دو اللہ کے لیے، اللہ کے واسطے جو ہے وہ گواہی دینے والے بنو۔ اور جب یہ تم عدل قائم کرنے لگو اور جب یہ گواہی دینے لگو، اب یہاں پر جو ہے وہ دو باتیں کہی جا رہی ہیں، نمبر ایک عدل قائم کرنا ہے، قیام بالقسط کی ہدایت ہے، اور دوسری ہے گواہی دینا۔ اور گواہی کس کی دینی ہے؟ نیکی کا حکم دینا ہے، بدی سے منع کرنا ہے، سچ کی گواہی دینی ہے، اللہ نے جو کرنے کا حکم دیا ہے اس کی گواہی دینی ہے۔ دو چیزوں کا حکم دیا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ جب تم عدل و انصاف قائم کرنے اٹھو گے، عدل و انصاف کیسے قائم ہوگا؟ جب تم امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر جو ہے نا، اس کا کام انجام دو گے، قرآن کو قائم کرو گے، نیکی کا حکم دو گے، لوگوں سے بدی جو ہے لوگوں کو بدی سے روکو گے، تو یہ ہوگا کیا کہ قوام بالقسط ہوگا اور شہداء للہ۔ تو جب تم یہ کرنے لگو گے تو کیا چیز جو ہے وہ رکاوٹ بن سکتی ہے؟ ولو علی انفسکم، وہ گواہی جو ہے اور وہ جو قوام بالقسط یعنی عدل و انصاف جو ہے، وہ تمہاری ذات کے خلاف ہو سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ ذات کا ذکر کیا گیا، اور انسان کا جو نفس ہے اس میں سب سے پہلے رکاوٹ بن سکتا ہے، کیونکہ بعض اوقات جو اب عدل قائم کیا جاتا ہے تو نفس کا مطالبہ کچھ اور ہی ہوتا ہے، نفس یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کے خلاف بھی کچھ بولا جائے، اور جب عدل قائم ہو رہا ہوتا ہے تو اس کی ذات کو نقصان ہوتا ہے، اور ہو سکتا ہے یہ نقصان حقیر ہو، قلیل ہو، عارضی ہو، یا بہت بڑا ہو۔ اور پھر کیا ہے कि इंसाफ का मुतालबा ये है कि सिर्फ दूसरों से ही नहीं, आप ये आपको ये चाहिए कि आप दूसरों से कहें कि वो अदल कायम करें, बल्कि क्या है कि जब अदल कायम करने लगो तो ये अदल जो है तुम्हारी जात के खिलाफ ही क्यों ना हो, अविल वालिदैनी या फिर वालिदैन, जो तुम्हारे वालिदैन हैं। अब आप देख लें कि वालिदैन जो है ये बहुत ही करीबी रिश्ता है, सबसे पहले अपनी जात की बात है, नंबर दो जो है वो वालिदैन का जिक्र किया गया, क्योंकि इंसान जो है अपने बाद जिन्हें सबसे ज्यादा चाहता है वो उसके वालिदैन होते हैं, वल अकरबीन। और जो तीसरा रिश्ता है वो है रिश्तेदारों का, और इसमें रिश्तेदारों में सारे आ जाते हैं, वल अकरबीन, और सारे के सारे जो है वो रिश्तेदार भी हो सकते हैं। तो अदलो इंसाफ की जद अगर तुम पर या तुम्हारे वालदेन या दीगर जो करीबी रिश्तेदार हैं जब इन पर पड़े तो इसकी परवाह ना करना, अपनी और इनकी रियायत के मुकाबले में अदल के तकाजों को अहमियत देना, इस चीज पर जो है वो तवज्जो दिलाई जा रही है। फिर आप देखिए इस सिलसिले में हमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से एक बड़ा ही खूबसूरत जो है वो वाकया मिलता है कि कुरैश के खानदान की एक औरत थी जो कि ऊंचा खानदान था, बनी मखजूम का, फातिमा नामी औरत ने चोरी की, और अब लोगों ने सोचा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिफारिश की जाए, और हजरत उसामा बिन जैद रजी अल्लाह अन्हु से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मोहब्बत करते थे, वो आपको बहुत प्यारे थे। लोगों ने हजरत उसामा रजी अल्लाह अन्हु के जरिए रसूल अल्लाह तक सिफारिश पहुंचाई, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसामा तुम अल्लाह की मुकर्रर की हुई हुदूद में से एक हद के मुकाबले में, एक हद के मामले में सिफारिश करने आए हो। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा देने के लिए खड़े हुए, फरमाया, लोगों तुमसे पहले कौमों को इसी चीज ने तबाह किया कि इनका हाल ये हो गया था कि अगर इनमें कोई मुअज्जज आदमी चोरी करता तो उसको छोड़ देते, और अगर कोई मामूली आदमी चोरी करता तो इस पर हद जारी करते। खुदा की कसम मैं ऐसा नहीं करने का, मैं तो अगर फातिमा बिन्त मोहम्मद भी चोरी करती तो इसका हाथ काट देता। और इसे जो है वो बुखारी और मुस्लिम ने रवायत किया है। इससे क्या बात पता चलती है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो अदल कायम करने वाले थे, और ये जो हक गोई है, ये जो अदल है, यही जो है वो दीन इस्लाम का हुस्न है, यही इस्लामी किरदार की सच्चाई है कि मुसलमान जो हैं वो हर हाल में जो है वो अदल कायम करने वाले होते हैं। और यहाँ पर भी जो है वो यही बात बताई जा रही है कि अपनी जात हो, अपने वालदेन हो या फिर रिश्तेदार ही क्यों ना हो, तो जब भी कोई मौका आए तो उसमें जो है वो इंसाफ जो है ना, इंसाफ कायम करने वाले बनना। और मुसलमानों की तारीख जो है वो इंसाफ कायम करने के वाकयात से जो है वो भरी पड़ी है, बड़े खूबसूरत वाकयात हैं। और इसमें जो है वो एक और वाकया मैं आपके सामने रखती हूं आप देखिए कि हजरत उमरे फारूक रजी अल्लाह ने जो थे वो एक घोड़ा खरीदना चाहते थे, आपको एक बद्दू मिला और आपने जो है वो बद्दू से कहा कि जरा मुझे ये घोड़ा दिखाओ, मैं इसे लेना चाहता हूँ। आप फिर घोड़े पर जो है ना सवार हुए, और कुछ सवारी करने के बाद हुआ ये कि घोड़ा जो था लड़खड़ाया और वो जो था ना लंगड़ा हो गया, उसको चोट आ गई। हजरत उमर रजी अल्लाह उन्होंने जो है वो घोड़े से नीचे उतरे और उस बद्दू को जाकर कहा कि मैं नहीं ये घोड़ा लेना चाहता, ये तो लंगड़ा के चलता है, लंगड़ा हो गया। तो उस बद्दू ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, जब आपने घोड़ा लिया था तो बिल्कुल सही सालिम था, अब या तो आप घोड़ा जो है वो खरीद लीजिए, घोड़ा जो है अब आपको जो है ये खरीदना पड़ेगा, या तो आप इसको खरीद लीजिए और या फिर इसको बिल्कुल वैसे वापस करें जैसे मैंने आपको दिया था। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ने कहा कि चलो ठीक है, हम किसी को जज मुकर्रर कर लेते हैं। तो काजी शुरह जो है उनको जज मुकर्रर किया गया, और उन्होंने जो है उसने फैसला जो है ना हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह के खिलाफ दिया। उन्होंने कहा कि बद्दू अपनी बात में सच्चा है, क्योंकि जब उसने घोड़ा दिया था तो बिल्कुल ठीक था, और गलती आपकी है कि जब आप उस पर सवारी कर रहे थे तो उस वक्त जो है वो घोड़ा जो है उसको चोट लगी है, तो अब या तो इसको आपको खरीदना ही पड़ेगा या आप इसको ठीक वापस करें। और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह नो उस काजी शुरह के इस अदल से इतने खुश हुए कि आपने उसको चीफ जस्टिस बना दिया। ये नहीं किया कि जैसे जो है वो उसको माजूल कर दिया हो। हमारे यहाँ तो ऐसा होता है ना कि जो अदल करने वाली आंखें होती हैं उनको निकाल देते हैं, जो जबानें होती हैं उनको काट देते हैं, जो सर होते हैं उनको झुका देते हैं कि कोई जो है किसी के खिलाफ बोल ना सके, उफ भी ना कर सके। लेकिन मुसलमानों की तारीख बड़ी ही खूबसूरत है, और यहाँ पर भी अदल कायम करने को कहा जा रहा है, और आपको भी ये अदल कायम करना है, बहसियते वालदेन के, बहसियते एक उस्ताद के, बहसियते एक प्रिंसिपल के, बहसियते एक ऑफिसर के, दोस्त के, हमसायों के, कहीं भी हैं आप, किसी भी मकाम पर हैं, तो आपको जो है वो अदल कायम करना है। फिर फरमाया इन यकुन गनियन औ फकीरन फल्लाहु अउला बिहिमा, इन यकुन गनियन अगर वो हो अमीर, औ फकीरन या गरीब, फल्लाहु अउला बिहिमा पस अल्लाह ज्यादा हकदार है इन पर। तो औला का लफ्ज जो है वो वली से इसका रूट है, मौलामिया, और इसके मानी होते हैं जैसे वली जो है वलायत, दोस्ती, कुर्बत, खैरखाही के माने में इस्तेमाल होता है। तो अल्लाह जो है तुमसे ज्यादा जो है ना इनका खैरखा है। अब आप देखेंगे यहाँ पे फकीर की बात और गरीब की बात जो है वो क्यों आई, क्योंकि आमतौर पर जो कोई गरीब होता है तो उस वक्त क्या किया जाता है कि गरीब जो है उसका लोग जो है वो ख्याल रखते हैं, और क्या चाहते हैं वो, ये चाहते हैं कि चूंकि ये गरीब है तो बाज़ औक़ात उसको फायदा पहुंचाने के लिए जो है वो अदल से हट जाते हैं। और फिर कभी क्या होता है कि अगर कोई अमीर होता है तो उस वक्त भी अदल नहीं करते, और उसकी दौलत से मरूब होकर जो है तो भी अदल से हट जाते हैं कि फिर हमें इससे फायदा नहीं पहुंच सकता, और फिर अमीर के हक में जो है वो बात करते हैं। तो यहाँ पे फरमाया कि किसी मालदार की जो अमारत है उसकी वजह से उसके साथ रियायत ना करो, और अगर कोई गरीब है तो उसकी गुर्बत की वजह से खौफ मत खाओ, क्योंकि अल्लाह ही जानता है कि इन दोनों की बेहतरी किस चीज में है। तो कोई गरीब है कोई अमीर है, अल्लाह इनका ज्यादा खैर खा है, तुम अदल और इंसाफ से हटकर अगर फैसला करोगे तो इनकी खैरखाही नहीं कर सकते। और आमतौर पर जब लोग अदल नहीं करते तो इसकी वजह क्या होती है, इसकी बुनियाद क्या चीज बनती है? फरमाया कि फला तत्तबिउल हवा अंता अदिलू, बस मत इत्तबा करो, मत पीछे चलो, अल हवा ख्वाहिश नफ्स की अंता अदिलू, के तुम अदल ना करो। तो यहाँ पे इसकी जो है वो वजह बताई जा रही है कि ख्वाहिशात नफ्स की जो पैरवी है उसके पीछे लगकर लोग अदल को छोड़ देते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कहते हैं कि दो आदमी अपना झगड़ा लेकर आए, इनमें से एक दौलतमंद था और दूसरा गरीब। आपका रुझान गरीब की तरफ था, क्योंकि आपका ख्याल था कि ये बेचारा अमीर आदमी पे ज्यादती कैसे कर सकता है, इस पे आयत जो है वो नाजिल हो गई। तो इससे जो है ये बात पता चलती है कि सिर्फ अल्लाह से डरो, सिर्फ अल्लाह का जो हुक्म है उसकी जो कानून है उसकी रियायत करो, उस पर जो है वो अमल करो। और तुम्हें क्या करना है, एक होता है ना किसी का इंसाफ की रविश पर चलना, दूसरा दूसरा होता है कि इंसाफ के अलमबरदार बनना। अब मुसलमानों तुम्हारा काम सिर्फ इंसाफ करना ही नहीं है बल्कि इंसाफ का झंडा लेकर उठना है, ताकि सोसाइटी में से, मुआशरे में से जुल्म मिटे और अदल कायम हो। और अदल को कायम करने के लिए जिस सहारे की जरूरत है, मोमिन होने की हैसियत से तुम्हारा ये मकाम है कि तुम ये सहारा फराहम करो। फला तत्तबिउल हवा, पस मत पीछे चलो ख्वाहिश नफ्स के अंता दिलू, के तुम अदल ना करो, कि अदल को छोड़ दो। वह इन तलवू, और अगर तुम घुमा फिराकर गवाही दोगे। तलबू जो है या पहले ही पढ़ चुकी हैं, लाम वो या इसका रूट है और इसके मानी होते हैं, इसके मानी है रस्सी को बल देना, बटना, सर फेरना। और यलबू ना अल से नाते हैं, ये भी पीछे भी आप पढ़ चुकी हैं कि अपनी जबानों को फेर कर जो है वो पढ़ते हैं। तो अहले मक्का जो थे वो क्या करते थे, और खास तौर पर जो है यहूदियों के अंदर ये बीमारी पाई जाती थी, और वो क्या करते थे कि वो अपनी जबानों का हेर फेर करके जो है वो इस्लाम का मजाक उड़ाते थे, और यहाँ पर जो है वो इसे मना किया जा रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वाजे तौर पर ये बात कह दी कि निजाम अदल को बिगाड़ने की दो शक्लें हो सकती हैं। एक तो ये कि उसको मसख करके पेश किया जाए, जैसे अहले किताब करते थे। आप पढ़ चुकी हैं सूरह आल इमरान की आयत 78 में, यलवून अलसिनातहुम बिल किताब। और दूसरी शक्ल क्या होती है कि बिगाड़ने की कोशिश तो ना की जाए, शक्ल बाकी रहे लेकिन जिंदगी के मामलात में उसको कोई अहमियत ना दी जाए। तो यहाँ पर जो है वो दोनों ही बातें जो है वो सामने रख दी गई। और उसमें पहली चीज क्या है कि फला तत्तबिउल हवा अंता दिलू के बाद का व इन तलवू, और अगर तुम जो है वो घुमा फिरा कर जो है वो बात करोगे, अगर तुम अल्लाह की आयात को जो है वो हेर फेर करके पेश करोगे, तुम इसमें तहरीफ करोगे, तुम इसमें तब्दीली करोगे, तो ये चीज जो है ये भी अल्लाह के यहां नापसंदीदा है। और दूसरी बात क्या है, औ तोरे दू के तुम नजरअंदाज कर दो, तो इससे भी मना कर दिया कि तुम्हें जो है वो ऐसा ना हो कि तुम जिंदगी के मामलात में अल्लाह के कानून को और अदल को जो है अहमियत ही ना दो। और अगर तुम ऐसा करोगे, फइन्नल्लाह काना बिमा तअमलूना खबीरा, पस बेशक अल्लाह जो कुछ तुम करते हो उससे बाखबर है। तो जो जुल्म तुम करोगे, जो बेइंसाफी तुम करोगे, दुनिया से छुप जाए लेकिन अल्लाह से छुप नहीं सकती, अल्लाह उसे बेखबर नहीं रहेगा। और जब अल्लाह खबरदार है, अल्लाह को पता है, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा कि वो तुम्हें इस जुर्म अजीम की बड़ी सजा देगा। अब आप देख लीजिए कि जो है वो सूरत अर-रहमान की इब्तदा में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है वो यही बात जो है वो कही कि लोगों, जो अल्लाह का निजामे कायनात है और जो ये जमीन और आसमान का निजाम जो है जो कायम है, तो लोगों इसमें जो है तुम क्या करो कि इसमें डंडी ना मारो। अल्लाह ततगौ फिल मीजान वकीमुल वजन बिल किस्ती वला तुखसिरुल मीजान, सूरत अर-रहमान आयत नंबर 8 और 9। तो वहां पे भी जो है वो अदल कायम करने का हुक्म दिया गया है। जैसे बाज वालदेन जो है अपने बच्चों में से एक बेटे से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, दूसरे से नहीं करते, या ये कि बेटियों में से एक बेटी को ज्यादा चाहते हैं, दूसरी को नहीं चाहते, तो हत्ता के चीजों के लेन देन में, बच्चों की जो चीजें उनको फराहम करनी है, जो वालदेन के फराइज है, उसमें भी जो है वो अदल करना चाहिए। और इसी तरह एक उस्ताद को जो है वो तालिबे इल्मों के दरमियान जो है वो अदल करना चाहिए। तो जिंदगी के तमाम मामलात में अदल को कायम किया जाए। फिर फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोगो जो ईमान लाए हो, आमिनू ईमान ले आओ। अब आप देखिए कि यहाँ पर जो है वो दो दफा ईमान लाने के लिए कहा जा रहा है। तो पहली दफा जो ईमान लाना है, इसका मतलब ये है कि इनकार करने की बजाय मान जाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोगो जो ईमान लाए हो, मानी क्या है, इनकार करने की बजाय जो है वो ईमान लाने वाले बनो। फिर दोबारा कहा कि आमिनू ईमान लाओ, इसके मानी है कि जिस चीज को तुमने माना है उसको दिल की सच्चाई के साथ, पूरी संजीदगी और खुलूस के साथ मानो। अपनी फिक्र, मजाक, पसंद, रवैया, दोस्ती, दुश्मनी, अपनी सारा कुछ जो है ना, जिस अल्लाह पर ईमान लाए हो उसके मुताबिक बना लो। तो यहां पर जो है पहली दफा क्या कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोगो जो ईमान लाने का दावा करते हो। तो जो ईमान ला चुके हैं उनसे कहा जा रहा है आमिनू, सच्चे ईमान लाने वाले बनो। किस पर, बिल्लाही अल्लाह पर, व रसूल ही और उसके रसूल पर, वल किताबी और उस किताब पर, अल्लज़ी वो जो नज़ला अला रसूल ही, जो अल्लाह ने अपने रसूल पर नाजिल की है, वल किताबी और हर उस किताब पर अल्लज़ी अनज़ला मिन क़ब्ल, जो इससे पहले वो नाजिल कर चुका है। यहाँ पे नज़ला और अनज़ला एक ही रूट से दो लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल हुए हैं। इन दोनों में बड़ा बारीक सा फर्क है। नज़ला के मानी होते हैं एहतमाम और तदरीज के साथ किसी चीज को नाजिल करना, दर्जा बदरजा, और अनज़ला का मतलब होता है कि उसको उतार देना। तो ये है इन दोनों के दरमियान जो फर्क है, जो यहाँ पर बयान किया जा रहा है। और वल किताब अल्लज़ी नज़ला अला रसूल ही, इससे मुराद है कुरान मजीद, और वल किताब अल्लज़ी अनज़ला मिन कब्ल, और इससे मुराद है हर उस किताब पर जो इससे पहले वो नाजिल कर चुका है। तो जो अल्लाह ने पहले किताबें नाजिल की हैं उससे मुराद तौरात भी और दीगर किताबें भी, और नज़ला से मुराद जो है वो कुरान मजीद है। फिर फरमाया वमन यकफुर बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी, और जो कोई इनकार करेगा और जिसने कुफर किया इसके साथ अल्लाह व मलाइकाते उसके फरिश्तों व कुतुबी और उसकी किताबों व रसूले और उसके रसूलों वल यौमिल आखिरी और आखिरत के दिन। तो जिसने ये जो आप देख लें कि ये ईमान जो है इस पर इन सब चीजों पर ईमान लाने से ईमान जो है मुकम्मल होता है, तो जो इनसे जो है वो इनकार करेगा फकत दल्ला दलालम बईदा, तो तहकीक वो गुमराही में भटक कर बहुत दूर निकल गया। अब यहाँ पर जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है वो यहाँ पर अपनी नाराजगी का इजहार किया है और फरमाया कि वो शख्स जो है, ये नहीं कहा कि सिर्फ वो शख्स गुमराह हो गया, बल्कि फरमाया कि फिर वो गुमराही में बहुत दूर जा पड़ा, इसलिए कि वो दीन की जो बुनियादें हैं इनका मुनकिर है। तो आप भी देख लीजिए कि कुफ्र जो है ना दो तरह का होता है। एक तो है किसी चीज का सिरे से इनकार करना, जैसे अहले मक्का ने इनकार किया था कि साफ साफ इनकार। दूसरा ये होता है कि जबान से मानना मगर दिल से ना मानना, जबान से इकरार करना मगर अपने अमल से इनकार करना। और जिस चीज को मानने का इंसान दावा कर रहा है लेकिन अमली तौर पर उसको मानता नहीं है, जैसे आप देख लें कि इस्लाम जो है इसको बहैसियत मुसलमान सब मानते हैं लेकिन अमली जिंदगी में इस्लाम जो है वो कितना नाफिज है। तो एक कुफर कौली होता है, एक कुफर जो है वो अमली होता है। तो आज का मुसलमान जो है वो कौली तौर पे कुफर नहीं करता लेकिन अमली तौर पर जो है वो इनकार करता है, वो कुफर करता है। और मैं अक्सर ये बात सोचती हूँ कि जैसे आज के दौर में मुसलमान मुस्लिम हैं, अगर ऐसा ईमान लाना होता जैसे आज के मुसलमान लाए हुए हैं कि कलमा पढ़ने के बाद नमाज भी नहीं पढ़ रहे, हलाल हराम की तमीज भी नहीं है, अमली जिंदगी में मुआशरती तौर पर जो हकूक फराइज की जो है वो एक दायरा अल्लाह ने मुकरर कर दिया है उसके अंदर भी पूरा उतरने की कोशिश नहीं करते, मामलात भी ठीक नहीं है, मईशत भी में भी हलाल हराम की तमीज नहीं है, जबान की हिफाजत नहीं है, डंडी मारते हैं और बहुत सी बुराइयां हैं जो पाई जाती हैं। तो यूं लगता है कि जैसे जो कुरान के अंदर है अमली जिंदगी को अगर देखें तो उसमें नजर नहीं आती। तो अगर ऐसा इस्लाम लाना ही होता तो अहले मक्का में से सब लोग इस्लाम ले आते। वो क्या कहते थे? वो यही तो कहते थे कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ तुम हमारी बातें मानो और कुछ हम आपकी मान लेते हैं। वो कंप्रोमाइज करना चाहते थे ना, वदाहनत चाहते थे। और जो है वो अल्लाह ने बार बार कुरान में कहा कि लकुम दीनुकुम वलिया दीन, लेकिन अफसोस के आज के मुसलमान ने खुद अपने आप को नहीं बदला लेकिन कुरान को जो है वो बदल दिया। तो अब यहाँ पर भी ये कहा जा रहा है कि जो कोई भी जो है वो इन अकायद पर ईमान नहीं लाएगा, वो कुफर करेगा, वो गुमराही में भटक कर बहुत दूर निकल गया। फिर फरमाया इन्नल्लज़ीन आमनू, रहे वो लोग जो ईमान लाए, सुम्मा कफरू फिर कुफर किया, सुम्मा आमनू फिर ईमान लाए, सुम्मा कफरू फिर कुफर किया, सुम्मा ज़दादू कुफ्र लम यकुनिल्लाहु लियग़फिर लहुम वला लियहदियहुम सबीला। फिर क्या हुआ? अब आप देखिए कि दो दफा ईमान लाने का जिक्र है और दो दफा ही जो है वो कुफ्र करने का जिक्र है। इसके क्या मानी है? इसका दरअसल जो है वो मतलब क्या है कि एक दफा तो ये कि ईमान लाए फिर उसके बाद जो है वो इनकार कर दिया, फिर क्या हुआ, फिर ईमान लाए फिर जो है वो इनकार कर दिया। तो उन्होंने क्या किया कि पहले तो ये कि बस ऐसे ही मानवीय लिहाज से नहीं, बातों बातों में जो थे वो ईमान लाए, और उसके बाद जो है वो उन्होंने क्या किया कि जब फायदा जो है वो इस्लाम से हटकर नजर आया तो फिर उन्होंने ईमान का जो है वो इनकार कर दिया, ईमान का जबानी दावा किया था, मुसलमानों की जमात में शामिल हुए, फिर उसके बाद जो है उसका इनकार कर दिया, फिर ईमान लाए, फिर कुफर किया, और तुम मजदादू, फिर वो बढ़ते चले गए कुफरन कुफर में। तो बढ़ते चले गए से मुराद क्या है कि उन्होंने दीन को एक गैर संजीदा तफरी समझ लिया, खिलौना समझ लिया, अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक उसे खेलने लगे, कभी मुसलमान और कभी फिर काफिर। तो जहां फायदा नजर आया ना उस तरफ वो हो गए, जहां उनको जो है वो मजा नजर आया उसी तरफ हो गए। तो कुफर में बढ़ते चले गए से मुराद क्या है कि फिर जो है वो इस्लाम के बिल्कुल ही मुखालिफ होते चले गए। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐलान किया कि लम यकुनिल्लाहु लियग़फिरा लहुम, तो अल्लाह हरगिज इनको माफ नहीं करेगा क्योंकि दीन इस्लाम को इन्होंने मजाक बना लिया। नंबर दो, वला लियहदिहिम सबीला, और ना इनको कभी राह रास जो है वो दिखाएगा। तो इसकी वजह क्या है कि ये लोग जो हैं वो अल्लाह से और अल्लाह के दीन के साथ मजाक कर रहे हैं। अब ये कि इनको सिराते मुस्तकीम पर नहीं चलाया जाएगा कि जिसका एंड जो है वो जन्नत है, क्योंकि मगफिरत के नतीजे में जन्नत जो है वो मिलती है, तो अल्लाह इनको बख्शेगा ही नहीं, और इनको इनकी मंजिल मकसूद जो है जैसे जन्नत में नहीं इनको आगे ले जाया जाएगा, बल्कि ये बशरिल मुनाफिकीना, तुम खुशखबरी दे दो मुनाफिकीन को। ये कौन लोग हैं? ये मुनाफिक हैं जो अमल नहीं करते बस बातें करते हैं। बशरिल मुनाफिकीन, बस आप खुशखबरी दे दीजिए मुनाफिकीन को, बिअन्ना लहुम अज़ाबन अलीमा, इसलिए कि इनके लिए क्या है, दर्दनाक अज़ाब है। अब आप देखें कि अज़ाब की खुशखबरी तो नहीं दी जाती ना, लेकिन बशीर खुशखबरी दे दो इनको दर्दनाक अज़ाब की, तो दरअसल ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनके साथ जो है वो मजाक किया है। यहाँ पे अल्लाह के गुस्से का इजहार है कि ये जो है वो ऐसे लोग हैं कि बस इनके लिए दर्दनाक अजाब है। अल्लज़ीना यत्तखिज़ूनल काफिरूना, ये वो लोग हैं, यत्तखिज़ूनल काफिरीना, कि ये बनाते हैं काफिरों को औलिया दोस्त, मिन दूनिल मोमिनीन, मोमिनों को छोड़कर, मुनाफिक जो है क्या करते हैं, अहले ईमान को छोड़कर काफिरों को अपना रफीक बनाते हैं। क्या ये इज्जत की तलाश में इनके पास जाते हैं? ये काफरों के पास क्यों जाते हैं? क्या इनको वहां पे जो है वो इज्जत मिलने वाली है, इसलिए जो है ये वहां पे जाते हैं? आप देखिए कि यहाँ पर जो है वो इज्जत का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया गया है, और अज्जा या इज्जू जो है इसके मानी क्या होते हैं? अब आप देखिए कि ये जो इज्जत का लफ्ज है इसके मानी कुव्वत के और गलबे के भी होते हैं, और आमतौर पर जो है वो इज्जत से मुराद जो है एक वकार समझा जाता है ना, जैसे एक पहचान होती है। तो फरमाया कि क्या ये इज्जत लेने के लिए काफिरों के पास जाते हैं? अयतगून इंदहुमुल इज्जा फ़इन्नल जमीआ, तो बेशक सारी इज्जत जो है वो अल्लाह ही के पास है, तो सारी कुव्वत गलबा वो अल्लाह ही के पास है। सूरत फातिर आयत 10 में फरमाया, मन कान युरीदुल इज्जत फलिल्लाहिल इज्जतु जमीआ, जो इज्जत का तालिब है तो उसे समझना चाहिए कि इज्जत सब की सब अल्लाह के पास है। इसी तरह सूरत अल मुनाफिकून आयत 8 में फरमाया, वलिल्लाहिल इज्जत वलिरसूलिही वलिलमुमिनीना वलाकिन्नल मुनाफिकीना ला यालमून, इज्जत अल्लाह के लिए है, इसके रसूल के लिए है और मोमिनीन के लिए है, लेकिन मुनाफिक नहीं जानते। वो क्या करना चाहते हैं? वो अपने निफाक के जरिए काफरों से दोस्ती करके इज्जत हासिल करना चाहते हैं, वो कुव्वत चाहते हैं, वो दौलत चाहते हैं, लेकिन असल में ये तरीका इज्जत हासिल करने का नहीं है, बल्कि ये जिल्लत और खारी का तरीका है। अच्छा, यहां पर जो है आप जरा नोट करती जाएं कि मुनाफिक की क्या क्या अलामतें हमारे सामने आ रही हैं, कहीं ये मेरे अंदर तो नहीं पाई जाती। तो आयत नंबर 135 में जो है वो अलामत क्या है कि अदल और इंसाफ करना ये ईमान का तकाजा है, और जो नहीं करता तो वो क्या करता है, वो इस्लाम से हटकर चलता है। दूसरी आयत नंबर 136 में जो है वो अकायद की मजबूती पर तवज्जो दिलाई जा रही है, और जो जिनके अकायद जो है वो ठीक नहीं है तो वो क्या करते हैं, उनके अंदर फिर कुफ्र पाया जाता है। फिर आयत नंबर 137 में निफाक की अलामत बताई जा रही है, और निफाक की अलामत क्या है कि जहां फायदा नजर आए उस तरफ रुजू करना, कभी इधर कभी उधर, स्टेबिलिटी ना हो इंसान के किरदार के अंदर। फिर आयत नंबर 139 में बताया जा रहा है कि जो मुनाफिक होते हैं वो इज्जत कुव्वत दौलत गलबा हासिल करने के लिए जो है वो जो काफिर हैं उनके पास जाते हैं, और अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं कि जो इज्जत है वो किसके पास है, अल्लाह के पास है। मुस्तदरक हाकिम में है कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ने मुल्के शाम के गवर्नर से फरमाया, ए अबू उबैदा तुम तादाद में सबसे कम और सबसे ज्यादा कमजोर थे, तुमको महज इस्लाम की वजह से इज्जत और शौकत नसीब हुई। खूब समझ लो, अगर तुम इस्लाम के सिवा किसी दूसरे जरिए से इज्जत हासिल करना चाहोगे तो अल्लाह ताला तुमको जलील कर देगा। तो इज्जत किससे मिलती है, सिर्फ और सिर्फ जो है वो अल्लाह की बंदगी करने से, इस्लाम जो है उसकी अताअत करने से, अल्लाह अल्लाह ताला को राजी करने से जो है वो इज्जत मिलती है। तो निफाक की अलामत क्या है कि इस्लाम को छोड़कर इज्जत हासिल करना, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नाफरमानी करके सोचना कि हमें इज्जत मिलेगी, और फिर इज्जत हासिल करने के लिए जो झूठी इज्जत है वो काफिरों को अपना दोस्त बनाना। वकद नज़ला अलैकुम फिल किताबी, अल्लाह इस किताब में तुमको पहले ही हुक्म दे चुका है। वकद नज़ला अलैकुम फिल किताबी, तो क्या बताया जा रहा है कि अल्लाह जो है इस किताब में पहले ही तुम्हें जो है वो हुक्म दे चुका है। अब जिस हुक्म का यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है आप नोट कर लीजिए, ये सूरत अल अनाम की आयत 68 है, सूरत अल अनाम की आयत 68। अल्लाह इस किताब में तुमको पहले ही हुक्म दे चुका है क्या, अन इजा समे तुम आयात बिल्लाही, कि जब तुम अल्लाह की आयात जो है सुनो उनको, युग फारू बिहा, कि इनके खिलाफ कुफर बका जा रहा है, यहां पे कहा जा रहा है कि जब तुम सुनो कि अल्लाह की आयात के खिलाफ जो है वो कुफर बका जा रहा है, या अल्लाह की आयात का इनकार किया जा रहा है, युग फारू बिहा उसका इनकार किया जा रहा है, नंबर एक। और युज ताजाऊ बिहा, और उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, युज ताजाऊ मजाक उड़ाना, हा जे हमजा मजाक उड़ाना, आप हाँ पहले भी जो है ये पढ़ चुके हैं, और ये कौन सा मजाक होता है, अंदरूनी तौर पे मजाक उड़ाना, फला तक उदू मा हूं, बस न बैठो इनके साथ, हत्ता यखूदू यहां तक कि वो मशगूल हो जाएं, फी हदीस इन गैरे ही इसके अलावा दूसरी बातों में। और अगर तुम वहीं पे बैठे हुए हो और तुम वहां से उठते नहीं, इन्नकुम इज़म मिस्लुहुम, बस बेशक तुम भी इन्हीं जैसे जो है वो हो जाओगे। अब आप देखिए कि अब यहाँ पे कहा जा रहा है मुसलमानों को कि ए मुसलमानों, अगर तुम देखो कि ऐसी महफिल है, ऐसी मजलिस है, ऐसी कोई पार्टी है, दावत है, जहां पे अल्लाह की आयात का मजाक उड़ाया जा रहा है, तो तुम क्या करो कि वहां मत बैठो। पहली बात क्या कही, फला तक उदू मा हम, तो ऐसे लोगों के साथ नहीं बैठना। अब ये कि मजाक उड़ाने वाले कौन है, ये काफिर मुनाफिक मुशरिक और उसके अलावा मुसलमान भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो अगर कोई अल्लाह की आयात का मजाक उड़ा रहा है तो क्या करना है, वहां पे नहीं बैठना। फला तक उदू मा हम, तो उनके पास मत बैठो, हत्ता यखूदू, और यहाँ पे यखूदू का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया गया है, इसका रूट है खा वो द्वाद, इसके मानी होते हैं जैसे पानी में उतरना, पानी के अंदर जाना। अब आप देखेंगे पानी के अंदर कोई जाता है तो क्या हुआ, वो मसरूफ हो गया ना, घुस गया अंदर, तो इसी से ये लफ्ज जो है वो फजूल कामों में लगे रहने के लिए भी इस्तेमाल होता है, जैसे फजूल कामों में मसरूफ हो जाना, उनके अंदर चले जाना। तो यहां पर यही बात की जा रही है کہ حتی یخودو یہاں تک کہ وہ مصروف ہو جائیں فی حدیث غیر ہی دوسری باتوں میں، کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار اور مذاق چھوڑ کر پھر اور کچھ بات کرنے لگے. تو جب تک اس کے علاوہ اگر وہ بات کچھ جو چھوڑ نہیں دیتے، مذاق اڑانا چھوڑ نہیں دیتے، اگر وہ کفر کرنا چھوڑ نہیں دیتے تو بیٹھ، اگر چھوڑ دیں تو بیٹھ سکتے ہیں، اگر وہ مذاق اڑا رہے ہیں یا کفر کر رہے ہیں تو پاس نہیں بیٹھنا، پھر وہاں سے اٹھ جانا ہے. اور اگر وہ اور باتیں کرنے لگے تو پھر بیٹھ سکتے ہیں. اور اگر آپ اٹھتے نہیں ہیں، انکم اذم مثلہم، پس بے شک تم انہی جیسے ہو گئے. آیت کا یہ حصہ بڑا ہی جو ہے وہ سخت ہے. اور یہاں پہ کیا فرمایا کہ اگر تم اٹھتے نہیں ہو، کفار فجار کی محفل سے تم اٹھتے نہیں ہو، کیونکہ یہ دوستی کا تقاضا ہے نا کہ وہ شراب پی رہے ہیں، وہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑا رہے ہیں اور وہ غلط کام کر رہے ہیں اور تم بھی ان کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے ہو، اور تمہارا بیٹھنا اس بات کا ثبوت ہے کہ تم ان سے محبت کرتے ہو اور اللہ سے تمہیں جو ہے وہ محبت نہیں ہے، قرآن سے تمہیں کوئی محبت نہیں ہے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ اس سے کیا بات پتا چلتی ہے کہ اگر کوئی ایسی محفل ہے جس میں جو ہے وہ گناہ کے کام ہو رہے ہیں، مثلا آپ دیکھ لیں کہ آج کل شادیاں ہیں، مہندی کی تقریبات ہیں، تو اس میں کتنے کام ہیں جو اس دین اسلام سے ہٹ کر ہوتے ہیں نا، تو اس میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں ہم تو نہیں کر رہے، لوگ کر رہے ہیں اور وہ بھی پاس بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو اب یہاں پر جو ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ بروں کی صحبت سے جو ہے نا وہ بچنا ہے، کیونکہ ایک اصل بات کیا ہوتی ہے کہ آپ برائی نہ کریں، لیکن برائی نہ کرنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ جو ہے وہ جہاں برائی ہو رہی ہو ان کی صحبت بھی اختیار نہیں کرنی چاہیے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ چند لوگوں کو اس جرم میں گرفتار کیا کہ وہ شراب پی رہے تھے. ان کے پاس ایک شخص کے بارے میں ثابت ہوا کہ وہ تو روزہ رکھے ہوئے تھا، اس نے تو شراب ہی نہیں پی، لیکن وہ ان کی محفل میں شریک تھا، جب وہ شراب پی رہے تھے وہ بھی پاس بیٹھا ہوا تھا روزہ رکھ کر. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے اس کو بھی سزا دی، کہا کہ وہ ان کی مجلس میں بیٹھا ہوا کیوں تھا جب وہ غلط کام کر رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو آخرت کے دن پر، اس کو چاہیے کہ ایسے دسترخوان یا کھانے کی میز پر نہ بیٹھے جہاں شراب کا دور جو ہے وہ چل رہا ہو. اب آپ دیکھ لیں کہ اگر کہیں جو ہے وہ کہیں غیبت ہو رہی ہے اور اب آپ جو ہیں وہ غیبت کی محفل میں بیٹھی ہوئی ہیں، تو آپ کا جو ہے وہ کردار کیا بنتا ہے؟ آپ دو کام کریں، ایک تو یہ کہ اس ٹاپک کو جو ہے وہ ختم کریں، غیبت جو ہو رہی ہے آپ اس کو جو ہے وہ روک دیں، اور دوسرا پھر کیا ہو سکتا ہے کہ اگر وہ نہیں ہٹ رہے غیبت کرنے سے تو پھر آپ اس محفل سے اٹھ کھڑی ہوں. دو ہی کام جو ہے وہ ہو سکتے ہیں. تو یہاں پر پھر اس ساری بات کا جو ہے وہ خلاصہ کیا ہے کہ اگر تم اٹھتے نہیں ہو، اگر تم اس گناہ کے کام کو روکتے نہیں ہو، انکم اذم مثلہم، تو اے لوگو پھر تم بھی انہی جیسے ہوگے، وہ جو غلط کام کر رہے ہیں ان میں، اور تم پاس بیٹھے ہوئے ہو، غلط کام کر تو نہیں رہے لیکن اس غلطی کو جو گناہ کا کام ہو رہا ہے اس کو تم برداشت کر رہے ہو، تم میں اور ان میں پھر کوئی فرق نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص کوئی برا کام ہوتا دیکھے تو اسے چاہیے کہ بازو سے اس کو مٹا دے، اور اگر وہ ایسا نہیں کر سکتا تو زبان ہی سے منع کر دے، اگر اتنی بھی طاقت نہ رکھتا ہو تو کم از کم دل ہی سے اسے برا جانے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. تو ایسی محفلیں جہاں پر اللہ کا، اسلام کا، دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو وہاں پہ کندھا نہیں دیا جا سکتا، اس محفل کی رونق کو، اس کی شان کو بڑھایا نہیں جا سکتا خود اس میں شامل ہو کر. تو ٹھنڈے دل سے وہاں پر بیٹھنا یہ ایمان کی غیرت کے خلاف ہے. تو وہ جو گناہ کر رہے ہیں، جو غلطیاں کر رہے ہیں، جو اللہ کی آیات کا مذاق اڑا رہے ہیں ان میں، اور جو وہاں بیٹھے ہیں ان میں پھر کوئی فرق نہیں ہے. تو مذاق کون اڑاتے تھے؟ وہ تو مکہ کے کافر اڑاتے تھے، مدینہ کے منافق اڑاتے تھے، یہودی اڑاتے تھے. اور افسوس کہ آج جو ہے اس سے بھی زمانہ گیا گزرا ہو گیا کہ آج مسلمان جو ہیں، مسلمانوں کی محفل ہوتی ہے اور اس میں اللہ کا مذاق اڑایا جاتا ہے، دین اسلام کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور اس میں جو ہے وہ دوسرے مسلمان بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں और उसको जो है वो बर्दाश्त कर रहे होते हैं, तो ठंडे पेटों ये बर्दाश्त नहीं हो सकता। उस वक्त ये सोचें, देखें अगर आप में से किसी के बाप को कोई गालियां दे रहा हो, उसका मजाक उड़ा रहा हो, आपके बेटे को, आपके शौहर को, आपको आप मजाक कोई उड़ा रहा हो, आप बर्दाश्त करेंगी? आप तो नहीं बर्दाश्त करेंगी। अल्लाह का मजाक, अल्लाह की आयात का मजाक, अल्लाह के रसूल का मजाक। अब आप देख लें कि जो है वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सहाबा के कार्टून बनाना, पिछले दिनों ये था वाकया, तो उसमें आपका आपके ईमान का हाल क्या था? आपने जो है वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, किरदार, आपका ब्यूटीफुल जो उसवा था, उसको आपने कितना पेश किया? और इसी तरह और जो है वो इस्लाम की जब आयात का मजाक उड़ा, जैसे बाज लोग कहते हैं जी नहीं, दीन इस्लाम पर आज अमल ही नहीं हो सकता, बाज कहते हैं कि नहीं भी छोड़ो, अब हर वक्त ही तुम इस्लाम को ले आती हो, तो बहुत सी तरह लोग जो है वो दीन इस्लाम को जो है वो साइड पर लपेट कर रख देते हैं। तो अगर आप उस वक्त उनको अच्छे तरीके से रोकते नहीं है, मना नहीं करते, इन्नकुम इज़म मिस्लुहुम, बेशक तुम भी इन्हीं जैसे होगे। इस आयत की रोशनी में आप अपना मुहासबा करें, आप अपना जायजा लें, आप क्या करती हैं जहां पे गुनाह की महफिल होती है, रक्स व मौसीकी की, या देखें कि एक तो होता है ना कहीं गए और किसी की महफिल है, आप कंप्यूटर पे बैठी हैं, पॉपअप हो गया, या आप दानिस्ता जो है वो माउस ऐसी जगह लेके जाती हैं जहां पे जो है वो गलत चीजें हैं, बिल्कुल जो है वो गलत गलत चीजें हैं कि जो है जिसे देखना नहीं चाहिए, इस्लाम मना करता है। तो इस्लाम क्या कह रहा है कि वहां से हट जाओ, फौरन वहां से हट जाओ। इन अल्लाह जामिउल मुनाफिकीन वल काफिरीन फी जहन्नम, बेशक अल्लाह जमा करने वाला है मुनाफिकीन को और काफिरों को जहन्नम में, जमीया सब के सब। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो मुनाफिकों को और काफिरों को जहन्नम में एक जगह जमा करने वाला है। अब ये किरदार बताया जा रहा है मुनाफिकों का और काफिरों का। अब ये सोचकर खुश नहीं होना कि ये मक्का के काफिरों की और मदीना के मुनाफिकों की बात हो रही है, बल्कि सोचना है कि आज मेरी जिंदगी में कहीं कुफर और मुनाफ़िकत तो नहीं पाई जाती। अल्लाज़ीना यतरब्बसून बिकुम, ये जो लोग है ना, अल्लाज़ीना से मुराद मुनाफिक और काफिर, यतरब्बसून, ये तरबुस में है, तरबुस जो है आप पहले भी पढ़ चुके हैं, रा बा स्वाद, इसके मानी होते हैं ज्यादा फायदा हासिल करने की मुद्दत का इंतजार करना। ताजिर है, जैसे वो चीजें जो उसके पास हैं, जो सामान है बेचने का, तो उसको अपने पास गोदाम में रखता है ताकि जब महंगी हो जाएंगी मार्केट में तब वो जो है उसको जो है वो मार्केट में लाएगा। तो अशियाए तिजारत की गिरानी का इंतजार, उसके महंगा होने का इंतजार करना, तो क्यों वो करता है? ताकि ज्यादा फायदा हासिल करे। तो ये मुनाफिक और काफिर जो है, ये तरबसूना बिकुम, ये तुम्हारे मामले में इंतजार कर रहे हैं। किस चीज का इंतजार? कि ऊंट किस करवट बैठता है? इस्लाम जो है किसको शिकस्त होती है या फतह? फइनकाना लकुम फतहुन, बस अगर तुम्हारे लिए फतह है, मिन अल्लाह, अल्लाह की तरफ से, अगर तुम्हें अल्लाह की तरफ से फतह हासिल हुई, पालू, तो वो कहते हैं अलम नकुम माकुम, क्या हम तुम्हारे साथ ना थे? क्योंकि माले गनीमत बांटना चाहते हैं। वइनकाना लिल काफिरीना नसीबुन, और अगर काफिरों के हक में नसीब है, यानी अगर काफिरों का पलड़ा जो है वो भारी हो गया, नसीबुन के मानिए हिस्सा, तो अगर जो है काफिर जो है उनके हिस्से में फतह आ गई, उनका पलड़ा भारी हुआ, कालू, तो ये मुनाफिक कहते हैं, ये काफिर कहते हैं, अलम नस्तहविज अलैकुम, क्या हम तुम्हारे खिलाफ लड़ने पर कादिर न थे? नस्तहविज जो है इसका रूट है हा वो जाल, और इसके मानी होते हैं जानवर को तेज हांकना, किसी काम में सुरत और फुर्ती दिखाना, किसी काम में जो है वो जल्दी करना, किसी पर मुसल्लत होकर उसको हांकना, उस पर गालिब आना, उसकी जो है वो हिफाजत करना। और ये लफ्ज जो है ये इस्तेमाल किया जाता है इसके अलावा, जैसे जो है वो इस्तहवज़ल-ईरू अल-ऐतान, गधे का गधी की पुश्त पर चढ़कर उसे दोनों जानिब से दबा लेना। तो इस्तहवज़ के फिर मानी क्या है कि किसी को पर पूरी तरह जो है काबू पा लेना। तो ये कहते हैं अलम नस्तहविज़ अलैकुम, कि क्या नहीं गालिब रहे हम अलैकुम तुम पर, वनमनाकुम मिनल मोमिनीन, और नहीं बचाया हमने तुमसे मोमिनों को, और हमने तुमको मुसलमानों के हाथ से नहीं बचाया। अब यहां पर ये बात बताई जा रही है कि ये मुनाफिक जो है इनका किरदार दोहरा होता है, कभी मुसलमानों का साथ देते हैं अगर उधर फायदा नजर आए, कभी काफिरों का जब उनका उनसे फायदा नजर आए। तो कहते हैं काफिरों का पलड़ा भारी रहता है तो उनसे कहते हैं कि क्या हम तुम्हारे खिलाफ लड़ने पर कादिर नहीं थे, यानी हम तुम्हारे खिलाफ भी लड़ सकते थे मुसलमानों के साथ, और अगर फिर भी हमने फिर भी क्या किया कि तुमको मुसलमानों से बचा लिया, मनमना कुम, और हमने मना किया बचाया तुमको मिनल मोमिनीन मोमिनों से मुसलमानों से। तो ये किसकी खसूसियत है, ये मुनाफिकीन की खसूसियत है। फल्लाहु यहकुमु बैनकुम यौमल कियामा, बस अल्लाह ही तुम्हारे और इनके मामले का फैसला कयामत के दिन करेगा। यहकुमु वो फैसला करेगा, बैनकुम तुम्हारे दरमियान, यौमल कियामा कयामत के दिन। वलन यजअल अल्लाहु लिल काफिरीन अलल मुमिनीन सबीला, और इस फैसले में अल्लाह ने काफिरों के लिए मुसलमानों पर गालिब आने की हरगिज कोई सबील जो है वो नहीं रखी। तो इन आयात में मुनाफिकों का किरदार जो है वो बताया गया है। तो पूरी बात का निचोड़ क्या है कि ये जो है वो चालबाजी करते हैं, जबानी तौर पर ईमान का इजहार करते हैं लेकिन अकीदा इनका जो है वो ईमान के मुनाफी होता है। बस जहां फायदा नजर आता है उधर को लुढ़क जाते हैं, और अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं कि इनके बारे में अल्लाह कयामत ही के दिन फैसला करेगा। वलन यजअलल्लाहु लिलकाफिरीन अलल मोमिनीन सबीला, और जब ये फैसला अल्लाह करेगा तो अल्लाह ने काफिरों के लिए मुसलमानों पर गालिब आने के लिए तो हरगिज कोई सबील नहीं रखी, कोई रास्ता नहीं रखा। और मुनाफिकों का हाल क्या है, इन्नल मुनाफिकीन युखादिउन अल्लाह, बेशक ये मुनाफिक अल्लाह को धोखा दे रहे हैं। कितने अफसोस की बात है, फरमाया कि ये मुनाफिक जो है वो अल्लाह के साथ चालबाजी करते हैं, धोखाबाजी करते हैं। वह हुवा खादिउहुम, हालांकि दर हकीकत वो अपने आप के साथ जो है वो धोखा करते हैं, अल्लाह के साथ नहीं बल्कि जो है वो अपने साथ धोखा करते हैं। क्योंकि जब वो अल्लाह के साथ जो है वो धोखाबाजी करना चाहते हैं तो अल्लाह ने उन्हें जो है वो धोखे में डाल दिया। वाइजा कामू इलासलाती कामू कुसाला, और जब ये नमाज के लिए खड़े होते हैं, जब ये नमाज के लिए उठते हैं तो खड़े होते हैं कुसाला। कुसाला जो है इसके मानी है सुस्ती के साथ, काफ सीन लाम इसका रूट है, और इसके मानी होते हैं काहली सुस्ती दिखाना, ऐसे मामले में सुस्ती का इजहार करना जिसमें सुस्ती करना मुनासिब ना हो। तो कसल मंदी सुस्ती, कसलान वाहिद है और कुसाला जो है ये जमा है। तो ये क्या करते हैं कि जब नमाज के लिए उठते हैं तो सुस्ती के साथ, युराउनन्नासा, ये लोगों को दिखाना चाहते हैं, दिखाते हैं लोगों को दिखाने की खातिर उठते हैं, उठना नहीं चाहते तो दिखाने की खातिर उठते हैं। वला यज़कुरून अल्लाह इल्ला कलीला, और नहीं याद करते अल्लाह को मगर थोड़ा। तो जब नमाज के लिए उठते हैं तो कसम साते महज लोगों को दिखाने की खातिर उठते हैं और अल्लाह को कम ही याद करते हैं। मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ालिक, ये कुफ्र और ईमान के दरमियान डावा डोल है। मुज़ब्ज़बीना का रूट रुबाई है, चार हरफी, ज़ालबा ज़ालबा, और इसके मानी है लटकना, मुअल्लक चीज के हिलने की आवाज को जो है वो जब जब कहते हैं। और हर किस्म की जो हरकत होती है, हर किस्म का जो इस्तराब होता है उसके लिए जो है, उसके लिए भी ये लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। आप देखिए कि अरबी जबान में ये जो लफ्ज है ये इसे भी इसके लिए भी इस्तेमाल होता है। जैसे जुबाब जो है वो मक्खी, शहद की मक्खी को कहते हैं, भेड़, आंख की पुतली को भी कहते हैं क्योंकि आंख की पुतली की में भी शहद की मक्खी की तरह जो है ना वो श्वाएं जो है वो निकलती हैं। और क्या है कि आप देखें कि जैसे आंख की जो पुतली होती है वो क्या करती है, वो उसके अंदर भी एक जैसे वो बार बार जो है वो हरकत कर रही होती है ना, और बार बार जो है वो उसके अंदर एक इस तरह बेचैनी पाई जाती है, इसी तरह जो शहद की मक्खी भी है। तो ये लफ्ज इस्तेमाल होता है लटकने, कोई चीज जब लटकी भी होती है तो उसके जो हिलने की आवाज है ना उसके लिए ये लफ्ज इस्तेमाल होता है। हर किस्म की हरकत और इस तरह आपको मुजब्जब कहते हैं। तजब्जुब भी आप जो है, अगर आप देखें तो तजब्जुब का लफ्ज भी आप जो है वो इस्तेमाल करती हैं कि मैं तो बहुत ही जो है वो तजब्जुब में हूं। तजब्जुब का मतलब क्या है? कि जैसे आप जो है वो किसी चीज को देखकर जो है वो परेशान है, तो आप इन दोनों में से कौन सा रास्ता इख्तियार करें? किसी चीज का हैरान होना मुख्तलिफ राहों में से किसी राह का फैसला ना करने की वजह से इज़्तिराब के साथ खुद दरमियान में लटक जाना। लटकने के लिए कुरान में चार लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं और ये जो जबजब है इसका चौथा दर्जा है, सबसे हाई दर्जा है। तो ये जो मुनाफिक है ये कुफर और ईमान के दरमियान लटके हुए हैं, ये डावा डोल है। ला इलाहा उलाई वला इलाहा उला, ना पूरे इस तरफ है ना पूरे उस तरफ, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना खुदा ही मिला ना मिसाले सनम। मैं युद्लिल्लाहु फलन तजदा लहु सबीला, और जिसे अल्लाह ने भटका दिया हो फिर इसके लिए तुम कोई रास्ता जो है वो नहीं पा सकते। तो जो अल्लाह के कलाम से और रसूल की सीरत से हदायत ना पाए फिर उसको जो है वो सच्चाई और हदायत जो है वो नहीं मिल सकती। तो जो सच्चाई का तालिब है तो उसको सच्चाई और हदायत कहाँ से मिलेगी? कुरान मजीद से और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से। लेकिन मुनाफिक क्या करते थे कि मुनाफिक जो थे वो मफाद परस्त रहते थे, हर हाल में फायदा ही फायदा हासिल करना चाहते थे। अब आप यहाँ पे देखें कि मुनाफिकत की एक अलामत ये बताई गई है कि वो नमाज के लिए उठना ही नहीं चाहते, उठते हैं तो सुस्ती के साथ, और नंबर दो दिखावा। तो अब आप देखें कि कहीं ये अलामत आपके अंदर तो नहीं पाई जाती, जरा आप अपना मुहासबा करें, क्योंकि हमें तो मुनाफिकत से नफरत है ना। अगर आपको कोई कह दे कि आप मुनाफिक हैं आप तो बहुत नाराज होंगी, आपको तो बहुत गुस्सा आएगा। लेकिन बात यह है कि ये नहीं कि मुनाफिकों की कोई खास किस्म की शक्ल होती है, बल्कि निफाक अपनी अलामतों के साथ पाया जाता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुनाफिक की नमाज ये है कि बैठा सूरज को देखता रहता है, यहां तक कि जब सूरज शैतान के दो सींगों के दरमियान आ जाता है तो उठकर नमाज असर के लिए चार ठूंगे मार लेता है, और इसमें अल्लाह को कम ही याद करता है। तो अब इसका ये मतलब है कि आप अपना जायजा लें कि क्या मैं नमाजें जो है वक्त की पाबंदी से पढ़ती हूँ या ताखीर से पढ़ती हूँ। नमाजों को ताखीर से पढ़ना, देर करके पढ़ना, ये निफाक की अलामत है। दूसरी निफाक की अलामत क्या है कि जो नमाज पढ़ी उसमें अल्लाह को नहीं याद किया। तो आप अपनी नमाज में जो है क्या करती हैं, अल्लाह को याद करती हैं या ये कि इधर उधर की सारी बातें जो हैं वो याद आती हैं, जो भी जो भूली हुई बातें हैं आपको वो जो है वो याद आती हैं? और कब याद आती हैं? जब ऐन आप नमाज पढ़ी होती हैं तो सारी भूली हुई बातें जो हैं और अहम बातें याद आती हैं। तो ये क्या है, ये क्या है, ये भी एक निफाक की जो है वो अलामत है। क्यों? इसलिए कि जो मुनाफिक होता है ना वो अल्लाह को याद नहीं करता, वो क्या करता है कि वो जो है वो अल्लाह को छोड़कर जो है वो इधर उधर की चीजों में जो है वो मसरूफ रहता है। और होना तो ये चाहिए था कि वो जब नमाज पढ़ता और अल्लाह को याद करता। और कुरान में है आकिम सलाता ये जिक्री, कि मेरी याद के लिए जो है वो नमाज कायम करो। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुनाफिकों पर कोई नमाज सुबह और इशा की नमाज से ज्यादा भारी नहीं, और अगर लोग इस सवाब को जानते जो इन नमाजों में है तो घिसट कर भी पहुंचते। और मैंने इरादा किया कि मुअज्जिन से कहूं कि वो तकबीर कहे और किसी को लोगों की इमामत का हुक्म दूं और आग का शोला लेकर इन लोगों के घरों को जला दूं जो अभी तक नमाज के लिए नहीं निकलते। इसे बुखारी ने रवायत किया है। तो दिखावे की नमाज पढ़ना, नमाज में रियाकारी करना, नमाज को लेट करके पढ़ना, या नमाज पढ़ने को दिल नहीं जा रहा, सुस्ती काहली का मुजाहरा, ये सब निफाक की अलामते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम कयामत के दिन अल्लाह के यहाँ बदतर इस शख्स को देखोगे जो दो रुखा हो, इनके पास आए तो इनकी सी कहे और उनके पास जाए तो उनकी सी कहे, से बुखारी ने रवायत किया है। और यहाँ पर भी जो है वो मुनाफिक मुनाफिक जो है वो उसकी अलामतें जो है बताई जा रही हैं। मुजब्जबीन बैन ज़ालिक ला इलाहा उलाई वला इलाहा उलाई वमन युद्लिल्लाहु फलन तजिद लहू सबीला। और जिसको अल्लाह गुमराह कर दे तो तुम इसके लिए जो है वो कोई राह ना पाओगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, ला तत्तखिज़ुल काफिरीना औलिया, कि तुम मत बनाओ काफिरों को दोस्त, मिन दो दूनिल मोमिनीन, सवाए मोमिनों के। तो ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, मोमिनों को छोड़कर काफिरों को अपना दोस्त मत बनाओ। अतुरीदूना तजअलू लिल्लाहि अलैकुम सुल्तानम मुबीना, क्या तुम चाहते हो कि अल्लाह को अपने खिलाफ सरी हुज्जत दे दो? क्या तुम चाहते हो कि अपने खिलाफ अल्लाह को सही जो है वो सुल्तान दे दो? सुल्तान जो है ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है दलील के लिए। तो क्या तुम अपने खिलाफ जो है वो अल्लाह को दलील देना चाहते हो, सरी हुज्जत देना चाहते हो? तो सुल्तान जो है इसके मानी क्या है? इसके मानी ये है कि वाजे जो है वो दलील, वाजे निशानी। तो ऐ मुसलमानों, तुम जो है वो अपने खिलाफ अल्लाह को सरी हुज्जत देना चाहते हो। और सरी हुज्जत क्या है? कि मोमिनों को छोड़कर काफिरों को अपना दोस्त बना लिया। इन्नल मुनाफिकीन फिद्दर्किल असफली मिनन्नार वलन तजिद लहुम नसीरा, बेशक मुनाफिक फिद दरकिल असफली, दर्क जो है जो ये दर्जे को कहते हैं, ये तबके को कहते हैं, जैसे सीढ़ियां नीचे को उतरना ना तो दर्क होता है, और दर्ज होता है सीढ़ियां ऊपर चढ़ना। तो जन्नत के अंदर जाना चढ़ने के लिए दर्ज का लफ्ज इस्तेमाल होता है, और दर्क का लफ्ज जो है ये जहन्नुम के लिए इस्तेमाल होता है। तो बेशक मुनाफिक जहन्नुम के सबसे निचले तबके में होंगे। और जहन्नुम जो है इसके कई नाम हैं, और इस सिलसिले में आप देखें कि यहां पर जो है वो एक नाम का जो है वो जिक्र किया जा रहा है, और वो क्या है कि फिद्दरकिल असफली मिनन्नार, के जहन्नुम का सबसे निचला दर्जा, दरकातुन नार, जन्नत जहन्नुम के जो दर्जे है ना, नंबर एक है अल जहीम, ये भड़कती हुई आग का गड़ा है, ये पहला दर्जा है। सूरत नाजियात आयत 37 से 39 में आप पढ़ सकती हैं। फिर दूसरा दर्जा है हाविया, गहरी खाई, ये कारिया आयत 8 से 11 तक में आप पढ़ सकती हैं। और फिर इसके बाद एक दर्जा है इसका अलहुतामा, ये सूरत अलहुमजा आयत 4 से 6 में आप पढ़ सकती हैं। और एक और है सकर, सूरत मुदस्सिर, सख्त झुलसा देने वाला, ये सूरत मुदस्सिर की आयत 26 से 29 तक। और इसका जहन्नुम का एक और दर्जा है लजा, ये सूरत अल मारिज आयत 15 से 18 तक। और एक दर्जा है सईर, दहकती हुई आग। तो जहन्नुम के मुख्तलिफ दर्जे हैं। तो मुनाफिक कहाँ पे जाएंगे? इस आयत को आप जरा हाईलाइट करें, बड़ी सख्त बात है जो यहाँ पे पता चल रही है। इन्नल मुनाफिकीना, बेशक मुनाफिक फिद्दरकिल असफली मिनन्नार, आग के सबसे निचले दर्जे में होंगे। अल असफलू अकबरू के वजन पर था असल में, और ये जो क्या है, ये सुपरलेटिव डिग्री है। फौका ऊपर को कहते हैं, तहता नीचे को कहते हैं, और नीचे के लिए एक और लफ्ज होता है असफल का, और असफल के मानी होते हैं कि सबसे निचला। जैसे एक ही चीज का ऊपर का दर्जा होता है उसके लिए आला आता है, और उसका जो निचला हिस्सा होता है उसको असफल कहते हैं। जैसे हदीस भी है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल यदुल उलिया खैरुम मिम्मन यदिस सुफला, अल यदुल उलिया ऊपर का हाथ खैरुन बेहतर है, मिन यदिस सुफला नीचे वाले हाथ से। तो मानी ये है कि ऊपर वाले हाथ से मुराद है जो सदका खैरात करने वाला हाथ है, तो वो हाथ जो है उससे बेहतर है जो कि नीचे वाला है। नीचे वाला कौन है? जो सदका खैरात लेता है, तो देने वाला जो है वो लेने वाले से बेहतर है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि मुनाफिक जहन्नुम के सबसे नीचे के तबके में होंगे, वलन तजिदा लहुम नसीरा, और तुम किसी को उनका मददगार ना पाओगे। इसके मानी ये हैं कि मुनाफिक जो है ना उसके कौल और फेल में तजाद है। जैसे काफिर है वो तो सिरे से इनकार कर देते हैं ना कि मैं इस बात को नहीं मानता, लेकिन मुनाफिक जो है वो क्या करता है, दोगली पॉलिसी पे रहता है, उसके अंदर रियाकारी पाई जाती है, वो दिखावा करता है, वो अल्लाह को धोखा देता है, वो मुसलमानों को फरेब देता है। तो अब यहाँ पर जो है यही बात कही जा रही है कि उसका गुनाह जो है वो इतना बड़ा है, इतना सख्त है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि वो जहन्नुम के सबसे निचले तबके में होंगे। और आप देख लें कि ये जो मुनाफिकों का ग्रोह है या ये जो तबका है, ये किसमें पाया जाता है, ये मुसलमानों के अंदर पाया जाता है। आपको अपना जायजा लेना है कि कहीं मेरे अंदर ये निफाक की जो इतनी सख्त जो अलामते हैं, इतनी खतरनाक अलामते हैं, कहीं मेरे अंदर तो नहीं पाई जाती। इल्लल्लज़ीना ताबू व असलहू, अलबत्ता वो लोग जिन्होंने तौबा कर ली, व असलहू और वो इसलाह कर लें, व तसमू बिल्लाही और वो अल्लाह के दामन को थाम लें, व अखलसू दीनहुम और अपने दीन को खालिस कर लें लिल्लाही अल्लाह के लिए, फाउलाइका माल मोमिनीन, तो ऐसे लोग मोमिनों के साथ हैं। अब यहाँ पर जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है वो तौबा करने के लिए, अपनी इसलाह करने के लिए जो है वो तर्ज अमल बताया है, जाप्ता हयात। नंबर एक, तौबा कर लें। तौबा करने का मतलब ये है कि अल्लाह की नाफरमानी के रास्ते से हटकर अल्लाह की अताअत की तरफ आ जाए, अपने अंदर से जो डबल फेस का रवैया है उसको छोड़ दें। नंबर दो, वह असलाहू और अपनी इसलाह कर लें। तो इसको तौबा कहते हैं कि जब इंसान अपने रवैये जो है ना उसकी इसलाह करता है, जाहिरन भी और बातिनन भी। नंबर तीन, अल्लाह का दामन थाम ले, वा तसमु बिल्लाह, इसके मानी क्या है कि फिर वो अल्लाह का दामन जो है वो थाम ले। और अल्लाह के दामन को थामने से क्या मुराद है कि फिर वो अल्लाह के हो जाए, अल्लाह की जो कुर्बत है, अल्लाह की जो मोहब्बत है उसको इख्तियार करें। और अल्लाह के दामन को थामना है, इस्लाम को थामना है, कुरान को थामना है, क्योंकि यहां पर जो है वो ए तसामा का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल हुआ है। और आपने पीछे भी पढ़ा था, वा तसिमु बिहब्लिल्लाह जमीअ वला तफर्रकू, और ऐन स्वाद मीम के मानी होते हैं पकड़ लेना, तो मजबूती से ये पकड़ लें अल्लाह को, वा अखलसू दीनहुम और अपने दीन को खालिस कर लें। और दीन जो है ये किसके लिए खालिस करें, लिल्लाह अल्लाह के लिए, और वो अपने दीन को अल्लाह के लिए खालिस कर लें। इखलास क्या है, इखलास जो है वो दीन इस्लाम का सरमाया है। अल्लाह वही अमल कबूल करता है जो मुखलिस हो, जो खालिस हो, जो रिया से पाक हो, जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात के लिए हो। जैसे फुकहा ने इस मुखलिस होने के मानी बयान किए कि मुखलिस वो आदमी है जो अमल महज अल्लाह के लिए करे और इस बात को पसंद नहीं करता कि लोग उसके अमल की तारीफ करें, फाउलाइका माल मोमिनीन, तो ऐसे लोग जो है वो मोमिनों के साथ हैं। वसौफ युतिल्लाहुल मोमिनीन अजरन अजीमा, और अल्लाह मोमिनों को जरूर अजर अजीम अता करेगा, अनकरीब अल्लाह मोमिनों को अजर अजीम अता करेगा। मा यफअलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम, मा यफअलुल्लाहु, क्या करेगा अल्लाह बिअज़ाबिकुम, अजाब देकर तुम्हें, आखिर अल्लाह को क्या पड़ी है कि तुम्हें खामखा अजाब दे, इन शकर तुम, अगर तुम शुक्रगुजार बंदे बनकर रहो, व आमन तुम और तुम ईमान की रविश पर चलो, वकान अल्लाहु शाकिरन अलीमा, अल्लाह बड़ा कदरदान है और सबके हाल से वाकिफ है। तो अब यहां पर ये बात बताई जा रही है कि ऐसा नहीं है कि अल्लाह जो है वो खामखा तुम्हें अजाब ही देने पे तुला हुआ है। अगर तुम शुक्रगुजारी की रविश इख्तियार कर लो, अगर तुम ईमान की रविश पर चलो, तो अल्लाह बड़ा कदरदान है और सबके हाल से वाकिफ है। अब यहां पर जो है वो शुक्रगुजारी और ईमान की रविश इख्तियार करने की नसीहत की जा रही है। शुक्रगुजारी क्या होती है, शुक्रगुजारी किसे कहते हैं, शुक्र के मानी होते हैं एतराफ करना, और इसके तीन दर्जे होते हैं। सबसे पहला दर्जा होता है कि दिल में अल्लाह के एहसानात का एतराफ हो, तो दिल अल्लाह के एहसानात के साथ जो है वो मोतरिफ हो, उसका एतराफ करे। नंबर दो, फिर दिल के अंदर जब कोई चीज होती है ना, तो यकीनन जबान से उसका इकरार और इजहार होता है। तो जब दिल अल्लाह के एहसानात से, मुनम हकीकी के एहसानात से वो भर जाए, तो फिर अल्लाह के एहसानात का जिक्र जबान से करना दूसरों के सामने, इसको कौली शुक्र कहते हैं। पहला कल्बी शुक्र, दूसरा कौली, और तीसरा है अमली। अमली क्या होता है कि फिर शुक्र के असरात जो है उसके जिस्म के अज़ा से जाहिर हों, और ये तीनों दर्जात लाजिम मलजूम होते हैं, बिलतरतीब वजूद में आते हैं। जब तक इंसान के दिल में शुक्र ना हो, जबान पर नहीं आता, जब तक जबान पर ना हो उसके अमल में नहीं आता। क्योंकि दिल में जब अल्लाह की वफादारी है, अल्लाह से मोहब्बत है, और अल्लाह के एहसानात से अल्लाह की मोहब्बत से दिल भरा हुआ है, दिल में खुशी है, एक सुरूर है, इखलास है, मोहब्बत है, तो लाजिमन जो है आप जहां बैठेंगी तो अल्लाह के एहसानात का जिक्र करेंगी। और अगर दिल जो है वो अल्लाह के एहसानात की बजाय नशुक्री से भरा हुआ है, जहां भी बैठे हैं तो नशुक्री है, अल्लाह की नशुक्री करना, हर वक्त जो है वो शिकवे शिकायतें, रोना धोना, तो ये क्या है, ये तीन दर्जे हैं जो स्टेप बाय स्टेप इंसान के अंदर आते हैं। और आप अपना जायजा लें कि मेरे अंदर कल्बी, कौली, अमली शुक्र जो है वो किस हद तक पाया जाता है, जबकि अल्लाह के इतने एहसानात हैं आप पर, इतने एहसानात हैं मुझ पर कि अनगिनत हैं। जो मिले हयाते खिजर मुझे, उसे मैं सरफे सना करूं, तेरा शुक्र फिर भी अदा ना हो, तेरा शुक्र कैसे अदा करूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आखिरी जिंदगी में रात को इतना कयाम करते कि आपके पांव सूज जाते। सहाबा ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने तो आपके सब अगले और पिछले गुनाह माफ कर दिए हैं, फिर आप इतनी मुशक्कत क्यों उठाते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, तो क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? तो अल्लाह ने मुझ पर और आप पर इतने एहसानात किए हैं कि अगर मैं और आप अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहें तो अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते, तो अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर सकते। और जो है वो शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह जो हैं, वो एक दफा किसी मस्जिद में गए और कहते हैं कि मस्जिद में जाने से पहले जो है मेरे पास पैसे नहीं थे कि जूता खरीद सकता, और इस बात पर मुझे बहुत ही अफसोस था कि इतने पैसे भी नहीं है कि जूता ले सकूं। तो कहते हैं मस्जिद में गया तो देखा कि एक शख्स है कि जिसके पांव ही नहीं है ना, और मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह अगर पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं जूता नहीं खरीद सका लेकिन मेरे पांव तो हैं, और ये इस बंदे के तो पांव भी नहीं है। तो हमेशा नेमतों के लिहाज से, दुनिया और दौलत के लिहाज से अपने से नीचे वालों को देखना चाहिए, ताकि हमारे अंदर शुक्रगुजारी पैदा हो। और रही बात दुनिया की और दुनिया की दौलत की, तो इसमें जो है हमेशा अपने से ऊपर वालों को नहीं देखें, नीचे वाले को देखें। और बात है जो है वो आखिरत की, नेकियों की, नेकियों में दौड़ की, तो अपने से ऊपर वालों को देखें कि मुझसे आगे लोग नेकी में जो है वो निकलते चले जा रहे हैं, ताकि नेकियों की दौड़ में आप भी आगे जो है वो बढ़ सके। और अगर तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो और इखलाके नीयत से ईमान ले आओ, तो अल्लाह को क्या पड़ी है कि तुम्हें अजाब दे? तो अल्लाह जानबूझकर जो है वो अजाब नहीं देता, छोटे मोटे गुनाह तो अल्लाह वैसे ही माफ कर देता है। इन शकरतुम व आमनतुम वकान अल्लाहु शाकिरन अलीमा। अल्लाह अपने बंदों पर इससे भी ज्यादा मेहरबान है जितनी एक माँ अपने बच्चे पर मेहरबान होती है। इंसान शिर्क करता है, नाफरमानियां करता है, बड़े बड़े गुनाह करता है, लेकिन जब वो तौबा करता है तो अल्लाह उसके गुनाह जो है वो माफ कर देता है। और अल्लाह कभी किसी को खामखा सजा नहीं देता, बल्कि जो है वो अल्लाह तो माफ करने के बहाने ढूंढता है। मेरी प्यारी बहनों, आज का ये जो सबक है, इसके आखिर पे हम देख लेते हैं कि कुफर से और निफाक से कैसे बचे। तो इस सिलसिले में पहली चीज ये है कि सच्चा ईमान लाए, और दूसरी चीज ये है कि अपने अंदर से निफाक जो है ना उसको खत्म करें। और निफाक दो तरह का होता है, एक अमली और एक एतकादी। एतकादी अकीदे का निफाक क्या होता है कि रसूल अल्लाह को झुठलाना, نمبر ایک رسول اللہ کو جھٹلانا، نمبر دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کسی خبر کو جھٹلانا، نمبر تین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھنا. آپ سوچ سکتی ہیں بھلا میں بھی رسول اللہ سے دشمنی رکھ سکتی ہوں، لیکن اگر آپ کی تعلیمات جو ہے اس کو اپنانا نہیں چاہتی تو یہ کیا ہے؟ یہ ان سے محبت کا تقاضا تو نہیں ہے نا. پھر کیا ہے کہ جو دین کی، جب دین رسوا ہو ذلیل ہو تو اس پہ خوش ہونا. پھر عملی منافقت کی جو اقسام ہیں ان میں بات کرنا تو جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی، امانت میں خیانت، جب جھگڑا کریں تو فحش کلامی پر اتر آئیں، جب کوئی معاہدہ کیا تو اس کو توڑ ڈالا، پھر نماز کے لیے سستی ٹال مٹول کا اظہار، یہ منافقت ہے. نماز کو تاخیر سے پڑھنا یہ بھی منافقت کی ایک علامت ہے. اور ایسی محفلوں میں جو ہے وہ بیٹھنا جہاں پہ اللہ اور دین اسلام کا جو ہے وہ مذاق اڑایا جاتا ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو معاف کرے اور ہم سب کو بہترین اور سچا مسلمان بنائے. اور آپ جو ہے وہ سچا مسلمان بننے کے لیے اور اخلاص اختیار کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ ایسے کام کرنا جو جس سے اخلاص پیدا ہو. اور آپ پھر اپنا جائزہ بھی لے سکتی ہیں کہ آپ جب نیکی کرتی ہیں تو اس کے بعد جو ہے آپ کیا چاہتی ہیں کہ جب لوگ تعریف نہیں کرتے تو کیا آپ ناراض ہو جاتی ہیں؟ یاد رکھیں یہاں نیت کو پھل لگتا ہے پیڑوں سے یہ کہہ دینا، اسے کچھ بھی نہیں ملتا جو نیت ہار دیتا ہے. یہاں نیت کو پھل لگتا ہے پیڑوں سے یہ کہہ دینا، اسے کچھ بھی نہیں ملتا جو نیت ہار دیتا ہے. چمک درکار ہے تجھ کو تو ذرے کی طرح ہو جا، پہاڑوں کو ہمیشہ وہ اندھیرے غار دیتا ہے. تو اصل بات جو میرے اور آپ کے سامنے آتی ہے کہ جو نفاق ہے وہ اخلاص کے منافی ہے. نفاق پیدا ہی اس وقت ہوتا ہے جب انسان جو ہے وہ منافقت جو ہے وہ کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سچا اور پکا مسلمان بنائے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.